Hare Krishna. All was Srila Prabhupada. Jai Gaur-Nitar. Srimad Bhagavatam, Dusra Skand, Adhyay Chhe, Shlok Sankhya, 34, 35, 36 and 37. Is adhyatmik jagat mein pravesh karne se pehle, Guru aur Gauranga se kripa ki yachna karte hue mangalacharan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्ष्वतर्मने यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना दपुलिंद पुलकशा आवीरशुंभा यवनाखसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनिशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताक्षम् नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय से जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। श्लोक नंबर 33 में ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वो कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ही आश्रित है। यहाँ तक ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो कुछ उन्होंने पूछा था उसके विषय में बता दिया। अब वो अपनी ओर से बता रहे हैं कि मैंने जब से भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किया है तो उस भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से क्या परिवर्तन आया है मेरे जीवन में, क्या आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं। इंसान के जीवन में जो कुछ कमी होती है वो सिर्फ इसीलिए होती है कि वो भगवान से खुद को दूर कर देता है। उसके जीवन में जो कुछ दुख होते हैं, मन की जो विचलता होती है, इंद्रियों का जो असंयम होता है, असत्य की ओर हृदय जो आकर्षण होता है, सब दुख का कारण एक ही है कि जीव भगवान के श्री चरणों से खुद को दूर कर बैठा है। और आज ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब जीव भगवान के चरणों की ओर आकर्षित हो जाता है, जब हृदय उत्कंठा के साथ भगवान के चरणों को दृढ़ता के साथ पकड़ लेता है, तो मनुष्य का, किसी भी जीव का जो अस्तित्व है वो वास्तव में आनंदित हो जाता है। संसार के सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं और जीव परम आनंद का आस्वादन करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती में गमृशो पलक्षते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति न मे ऋषि का निपतन्त्य संपथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवताधृतो हरि न भारती मे गमृशो पलक्षते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषि का निपतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवताधृतो हरि। शब्दार्थ, न भारति मेंग मृषोपलक्षते। न भारति न मना कभी नहीं, भारति मना कथन, में यानी मन, अंग हे नारद, मृषोपलक्षते असत्य, मृषोप मतलब असत्य, और अलग उपलक्षते मतलब प्रमाणित होता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो कभी भी असत्य नहीं होता, यानी मेरे मुख से जो कुछ भी निकलता है ना वो सत्य हो जाता है, जो बोलता हूँ वो सत्य हो जाता है। न भारती मेंग मृषोपलक्षते, कुछ भी मेरे मुख से निकलता है ना वही सत्य बन जाता है। न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति न वय, न मतलब कभी नहीं, व मना वय मतलब निश्चय ही, निश्चय इसमें कोई संदेह नहीं है, क्वचित कभी, मैं यानी मेरा मनसो मृषा गति, मेरा मन जो है वो असत्य की ओर आकर्षित होता ही नहीं है। सबसे पहले मेरी जिह्वा जो है वो इतनी पवित्र हो गई है कि जो बोलता हूँ वो सत्य हो जाता है, और मेरा मन इतना पवित्र हो गया है कि वो किसी भी असत्य की ओर आकर्षित ही नहीं होता। वास्तव में भक्तों, ये दो यदि कंट्रोल में आ जाए ना, ये मन जो सदैव संसार की असत्य वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, और उसी के कारण जीव जो है जन्म जन्मांतर तक भटक रहा है, और ये मन भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरा इतना कंट्रोल हो गया है कि अभी वो असत्य की ओर जाता ही नहीं, और जीव जो हर समय असत्य को बोलती रहती है, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं न भारती मैंग मृषो पलक्षते, मेरी जीवा कभी असत्य नहीं बोलती है, जो बोलती है वही सत्य होता है। और उसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा जीव को विचलित करने वाली वस्तु है वो क्या है, ऋषिकाणी। ऋषिकाणी मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, इसलिए बोलते हैं शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल, ये शरीर अविद्या का जाल है, अविद्या है, शरीर के हर एक अंग से अविद्या के कारण, क्योंकि वो शरीर हमें ये आभास कराता है कि हम यह शरीर है, आत्मा की ओर हमारा आकर्षण नहीं जाने देता, बस शरीर की ओर आकर्षण कराता, अविद्या का जाल है। और जड़ेन्द्रिया ताहे का, ये इंद्रियां जो है वो हमारी काल बन गई हैं, ये इंद्रियों का भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण होना वही तो हमें बार बार मराता है, इसलिए जड़ेन्द्रिया ताहे काल। लेकिन ये ब्रह्मा जी कहते हैं न मे ऋषि काणी पतंत्य सत्पते, ये मेरी इंद्रियां जो है वो असत्य की ओर आकर्षित नहीं होती, मेरा मन भी असत्य की ओर आकर्षित नहीं होता है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। ये सब कैसे हो गया, अगर उनसे पूछा जाए ब्रह्मा जी से कि इतना सब अपने इंद्रियों को, अपनी जिह्वा को, अपने मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया, तो वे कहते हैं यने रिधोत्कन क्यवतादितो हरि, यन में मतलब क्योंकि मेरा हृदय जो है औत्कंठ्यवता मतलब बहुत ज्यादा उत्कंठा से, मेरा हृदय जो है वो उत्कंठा के साथ धृतो हरि, धृतो मतलब धारण कर लिया, हरि मेरे हृदय ने हरि के चरण कमलों को अपने अंदर जब से धारण कर लिया है ना, तब से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वास्तव में ये हृदय जो है ना, उसके अंदर बस भगवान के चरण कमल स्थापित हो जाए, हमारा हृदय इतना अपवित्र है, इतना अशांत है कि वो भौतिक वस्तुओं को अपने अंदर धृत माने जकड़ के बैठा है। बस एक बार महारानी की कृपा हो जाए और हमारे अशांत और अपवित्र हृदय में भगवान के चरण कमल स्थापित हो जाए, श्री हरि के चरण कमलों का वास जब हमारे हृदय में हो जाएगा ना, फिर कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी, सारी प्रॉब्लम्स उसी दिन सॉल्व हो जाएंगी, बस जीव को कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, बस वो प्रेम जो संसार में है ना, वो प्रेम संसार से हटकर भगवान के श्री चरणों की ओर हो जाए, बस फिर जो कुछ भी होगा वही मंगलमय होगा, वही आनंदमय होगा और वही कल्याणकारी होगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, अनुवाद देखिए, हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता, ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। ये जो विद्या जो भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को दी थी और ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्म हृदय पहले बुद्धिमान जी ब्रह्मा जी को जब ये विद्या दी गई तो ब्रह्मा जी के प्रथम शिष्य हैं नारद मुनि। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नारद मुनि अपने शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में विस्तारित करते हैं। ये सारा जो ज्ञान इस भौतिक जगत में है ना, वो वास्तव में भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी के प्रथम शिष्य हैं नारद और नारद के शिष्य हुए वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया और वही आज संसार में जितने भी जीव हैं वो उसी ज्ञान से सीखते हैं और फिर इस ज्ञान को विस्तृत कर रहे हैं पूरे सारे विश्व में। जितना भी संसार में ज्ञान है वो वही भगवान से आया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आया है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो जो ब्रह्मा जी कहते हैं उसको कभी काटा नहीं जा सकता, उसको कभी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारा ज्ञान उन्होंने ही सबको बताया है। वेदव्यास जी ने जो वेदों में लिखा है वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही नारद को, नारद जी के द्वारा वेदव्यास जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी के वाक्य कभी काटे नहीं हो सकते, उनको कभी भी रोंग नहीं करा जा सकता। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता आ रहा है। अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा चल रही है और वही ज्ञान जो आज हम तक पहुंचा है वो स्टार्ट कहां से हुआ? ब्रह्मा जी से। और आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं। बहुत सारे जीव होते हैं, कुछ मुक्त जीव होते हैं और कुछ बद्ध जीव होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी पूर्ण रूपेण मुक्त हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अमोघ मानना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो ब्रह्मा जी का नाम प्रथम महाजन में आता है, स्वयंभू। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा यदि उस बात को हम मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अमोघ मानना पड़ेगा, मतलब वही परम सत्य है। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा जी के हृदय में आता है और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतएव उनके कथन अक्षरक्षर सत्य होते हैं, 100% सत्य। इसके अंदर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मा जी कहते हैं वो परम सत्य है क्योंकि वो परम मुक्त जीव हैं और पूर्ण जीव हैं, सर्वोच्च पूर्ण जीव, भौतिक जगत में प्रथम जीव, और क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान भगवान से प्राप्त किया है इसलिए उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध और 100% सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्त को दोहराते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्यों के ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और उत्कंठा के साथ उन्होंने भगवान के चरणों को हृदय में धारण किया है। और कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्म संहिता बताई है उसमें एक ही पंक्ति को बार बार दोहराते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप आदि पुरुष हो, आपका और कोई आदि नहीं है, समस्त कारणों के कारण हो, मैं आपका भजन करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ, मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और अपने सामान्य स्वभाव में जो भी करते हैं उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कुछ भी वे कहते हैं, जो कुछ भी वे करते हैं, जो आचरण करते हैं, उन्हें शत प्रतिशत सत्य मानना चाहिए। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम का संबंध निर्माण करते हैं और ये जान जाते हैं कि हमारा संबंध केवल कृष्ण के साथ है, तो कृष्ण अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। जो उसके भक्त के मुख से निकलता है ना, उसे वो पूरा कर देते हैं। जो कार्य वो करना चाहते हैं उसे वो सक्सेस कर देते हैं। क्योंकि भगवान भगवत गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं क्यों? तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसीलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। श्री प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बता रहे हैं कि भक्ति योग प्रारंभ ही तब होता है जब हम एक शुद्ध प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं। और जब हम इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से जुड़कर भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भगवान अपने भक्तों की विशेष रूप से सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भक्त सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भक्त तो मुक्त हैं, वो तो भौतिक जगत में बद्ध नहीं है, वो तो दूसरे जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निर्विशेष है। भगवान शाश्वत व्यक्ति हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति हैं। ये मुक्त होने के का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के अंदर जाके लीन हो गए, नहीं। उनका एक इंडिविजुअल एक अस्तित्व है, वो तो खत्म नहीं होगा। जैसे भगवान एक व्यक्ति है, यानी अव्यक्त नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त में फर्क क्या है? व्यक्त मतलब जिसका कोई स्वरूप हो, कोई व्यक्ति हो, और अव्यक्त मतलब जिसका कोई स्वरूप ना हो। तो यहाँ साफ साफ बताया कि भगवान शाश्वत व्यक्ति हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति हैं। क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतः वे सदैव व्यक्ति रहता है। चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष रहते हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपत नहीं होती। जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया लाइन नंबर 3 में, नमे ऋषि कारणी पतंत्य सत्पथे, मेरी इंद्रियां कभी भी गलत राह की तरफ भागती नहीं है। मतलब मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित नहीं होती हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त की इंद्रियां तो होती हैं, लेकिन वो क्योंकि भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। कैसे? इंद्रियों के द्वारा वो केवल भगवान की सेवा करता है, नेत्रों से भगवान के दर्शन करता है, कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, जिह्वा से भगवान को अर्पण किए हुए स्वादिष्ट भोजन को आस्वादन करता है, नासिका से भगवान के चरणों पर रखी हुई तुलसी का सुगंध ग्रहण करता है, और अपने हाथों से भगवान की सेवा करता है, पैरों से भगवान के मंदिर की ओर जाता है। तो इस तरह सारी इंद्रियां क्योंकि भगवान की सेवा में लगी हैं, तो भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपत्त नहीं होती। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। अब भक्त जो सेवा कर रहा है, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वीकार कैसे कर रहे हैं? भक्त बोलता है, भगवान श्रवण करते हैं, भक्त खिलाता है, भगवान खाते हैं, भक्त पहनाता है, भगवान पहनते हैं। वो कैसे संभव है? जब भगवान की भी इंद्रियां हो, भगवान एक व्यक्ति हो। इसीलिए बताया, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपत्त नहीं होती हैं, क्योंकि जब इंद्रियों को उत्तम रस का आस्वादन हो जाता है, उत्तम रस भगवान के साथ जब उसका संबंध हो जाता है, देखने योग्य जो सबसे सुंदर व्यक्ति है, जो दृष्टि उसको देखती है, स्पर्श करने योग्य जो सबसे सुंदर है उसको स्पर्श करने का अवसर मिलता है, प्रेम करने योग्य जो अनंत अनंत कामदेवों को भी मात करने वाला है, उसको जब प्रेम करने का आस्वादन एक बार हो जाता है, फिर भौतिक संसार की जो घृणित वासना है वो समाप्त हो जाती है। भौतिक भोग का आकर्षण वो कभी भी ऐसे भक्त को विपत्त नहीं कर सकता है। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है कि भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धा पूर्ण आसक्ति। भले ही इस भौतिक जगत में भक्त रहता है और वो जो अत्यंत आध्यात्मिक आनंद है उसका यहाँ पर तो केवल वो अनुभव कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उसकी श्रद्धा इतनी तीव्र होती है कि वो फिर भौतिक आसक्ति की ओर आता नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा उसके हृदय में इतना तीव्रता के साथ दृढ़ होता है कि उसे यकीन होता है कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त संसार में और कहीं सुख है ही नहीं, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त संसार में और कोई इस योग्य है ही नहीं कि उसे प्रेम किया जाए। इसलिए इसका कारण है भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्व आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। क्या मानदंड है? कि जीव भगवान के चरणों में इतनी श्रद्धा को प्रबल बना दे कि संसार उसके सामने तुच्छ लगने लगे। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव उसी समय तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है जब उसकी आसक्ति संसार से हटकर भगवान श्री कृष्ण अपार निष्ठा के साथ हो जाती है, यही सिद्धि का मानदंड है। भगवान श्रीमद भगवत गीता 14.26 में इसकी पुष्टि करते हैं। मांसयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणांसम अतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मांसयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वो व्यक्ति जो अविचलित भाव से मेरी भक्ति में लगता है, जो केवल और केवल निष्ठा के साथ परिपूर्ण श्रद्धा के साथ जब मेरी भक्ति में लगता है, फिर सगुणान समति तैतान, फिर वो इन भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करता है। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममय सेवा में सेवा के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ होते हैं। बस यदि हृदय के अंदर हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममयी सेवा के माध्यम से भगवान के साथ घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक हो, पूरा हृदय इंद्रियां आत्मा यही एक इच्छा करें कि मुझे भगवान के साथ प्रेममयी सेवा का संबंध स्थापित करना है, घनिष्ठ संपर्क में आना है, तो फिर वो जो भी कार्य करता है वो अमोघ होगा। कभी भी किसी भी बात पे उसका पराजय उसकी नहीं होगी और जो भी वचन बोलेगा वो अमोघ होगा, मतलब वही सत्य होगा। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान परम सत्य हैं और यदि हम हृदय के साथ भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ जब अब भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं, तो वही गुण जो भगवान के अंदर हैं वही जीव के अंदर भी आ जाते हैं, वही दिव्य गुण को जीव प्राप्त करता है। और इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने के से असफल होता है। यहाँ भौतिक संसार में यदि हमारी आसक्ति हो जाती है, फिर भले कितना ही ज्ञान हो जाए, कितना ही मानसिक चिंतन हो जाए, तो भी उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि सत्य के साथ तो संबंध जोड़ा ही नहीं, तो फिर असत्य संसारी असत्य होने से असफलता ही प्राप्त होती है। केवल इसलिए कि इसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता, ऐसे ईश्वर विहीन श्रद्धा पूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही सुनत क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। श्रद्धा पूर्ण वचन, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन, यानी कि भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं है, फिर संसार में कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, भले तथा कर भौतिक दृष्टि से चाहे कितने ही समृद्ध क्यों न हो, बड़े बड़े स्पेसशिप बना दे, बड़े बड़े कंप्यूटर बना दे, बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर ले, लेकिन क्योंकि वो भगवान में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो विश्वास के योग्य नहीं है। वो जो बोल रहा है उसमें कोई सत्यता नहीं है, भले ही भौतिक दृष्टि से उसने समृद्धि प्राप्त कर ली है, भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, तो विश्वास के योग्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। और अंतिम लाइन में श्री प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में सब कुछ बता दिया कि भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। थोड़ा सा भी यदि हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है और भगवान के प्रेम के प्रति आकर्षण है ना, तो संसार की सारी सफलता जो है उसके समान तुच्छ है, उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे ब्रह्मा जी इसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान को समझना संभव ही नहीं है, चाहे जीव कितना ही ज्यादा दक्ष हो जाए, कितना ही ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, लेकिन भगवान जो है वो अचिंत्य है। भगवान को समझा नहीं जा सकता है, भगवान को जाना नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। समस्त वस्तुओं के उद्गम है भगवान, और क्योंकि वो सारी वस्तुओं का मूल आधार है, तो जो मूल होता है, जो उद्गम होता है, उससे उत्पन्न की हुई वस्तुएं जो है वो उसको मूल को नहीं समझ सकती, कारण को समझ ही नहीं सकती, चाहे वो साक्षात ब्रह्मा जी ही क्यों न हो। और जब ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस स्थिति पर आ गया हूँ कि मैं समस्त वेदों का ज्ञाता हूँ, गुरु शिष्य परंपरा में मैं परम गुरु हूँ, यद्यपि सारी तपस्या मैंने की है, भले मैं योग शक्ति को मैंने कितना ही धारण किया है, आत्म साक्षात्कार में मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे मूल आधार है। और जब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ सकते, तो हम जैसे मूर्ख प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी को नहीं समझ सकते, है ना। हम तो इस संसार में क्या हो रहा है उसको नहीं जान सकते। संसार की बात छोड़िए, जिस कंट्री में हम रहते हैं ना, उसमें क्या हो रहा है उसके विषय में भी नहीं जानते। इस कंट्री को छोड़िए, जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी के बारे में भी नहीं जानते। उससे भी आगे बढ़े, जिस एरिया में हम रहते हैं ना, अपने एरिया के बारे में भी हमें पूरा पूरा ध्यान नहीं है। एरिया को छोड़े, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उस बिल्डिंग में कितने सारे व्यक्ति हैं, कितने सारे घर हैं, क्या हम सबके बारे में जानते हैं? नहीं। बिल्डिंग की बात छोड़िए, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ना, उसके विषय में भी हमको नहीं खबर। और पड़ोस की बात छोड़िए, अपने ही घर में, हमारे घर में जो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके विषय में भी हम नहीं जानते। सुबह को बोल के जाते हैं कॉलेज जा रहे हैं, फिर ना जाने कहाँ निकल जाते हैं, हमें तो उनके विषय में भी नहीं पता होता है। उनको छोड़ दो, हमें अपने आप के विषय में पता नहीं होता है। जब बीमार हो जाते हैं तो पता नहीं कौन सी बीमारी लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं चेकअप कराओ, और फिर कहीं जाकर डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है, वो भी बस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हो सकता है ये बीमारी हो सकता है ये बीमारी हो, कभी कौन से टैबलेट्स देते हैं, कभी कौन से टैबलेट। कहने का अर्थ ये है कि हम इतने अक्षम हैं कि अपने आप को भी नहीं समझ सकते, तो बोला हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आज का मनुष्य दावा करता है कि भगवान कैसे हो सकता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा किया। भगवान समझने की नहीं, भगवान तो स्वीकार करने की वस्तु है। भगवान पे तो श्रद्धा रखनी चाहिए। जो गुरु साधु और शास्त्र के वाक्य हैं कि वो भगवान है जिसने हमें बनाया है, और उसका नाम कृष्ण है जो संसार को उत्पन्न करता है, उसका पालन करता है, उसका प्रलय करता है, तो भगवान तो श्रद्धा की वस्तु है। जब श्रद्धा नहीं होगी तो ना भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भगवान को समझ सकते हैं। फिर श्लोक नंबर 35 में ब्रह्मा जी कहते हैं, सोहम समाम्या ना यमयस्तपोमया प्रजापतिना अभिवंदितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस् तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभव सोहं समाम्ना यमयस्तपोमया प्रजापतिना अभिवंदितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस् तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभव सोहं। सो मतलब वही स्वयं मैं, यानी इतना मैं महान हूँ। ब्रह्मा जी अपने विषय में कहते हैं सोहम, मैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, समाम नाय मय, मतलब वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में मैं वैदिक ज्ञान जब भगवान ने स्टार्ट किया है ना, तो उस शिष्य परंपरा का मैं अग्रसर हूँ। समाम नायम तपोमय, मतलब समस्त प्रकार की तपस्याएं की हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सारा वैदिक ज्ञान ऐसे ही दे दिया भगवान ने, मैंने हर प्रकार की तपस्या करने के बाद भगवान के इस कृपा को प्राप्त किया कि भगवान ने मुझे सारा ज्ञान जो है वो प्रदान किया। मेरे हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया जब मैंने सारी तपस्याएं कर दी। फिर प्रजापति नाम अभिवंदित पति, प्रजापति नाम यानी जीवों के समस्त पुरुष जो हैं, प्रजापति अभिवंदित वो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरा पूजन करते हैं। पति मैं उन सबका, जितने प्रजापति हैं उनका स्वामी मैं हूँ। और आगे कहते हैं आस्थाय योगम निपुणम समाहितम, आस्थाय सफलता पूर्वक अभ्यास किया हुआ योगम योग शक्ति, निपुणम अत्यंत ही पटु हूँ, यानी एक तो मैंने पहले तपस्याएं की, तपस्या करने के बाद मुझे भगवान ने जो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे ज्यादा सबसे प्रथम जो शिष्य मैं उनका हूँ, और उन्होंने मुझे सारे वेद सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, सारे प्रजापति जो हैं उनका ईश्वर में हूँ, और आस्थाय योगम निपुण समाहिता समस्त प्रकार के योग शक्तियों में मैं निपुण हूँ और एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव, तम यानी परमेश्वर को न आद्य गच्छम, न मतलब नहीं, आद्य गच्छम मतलब ठीक से समझना। इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी तम नादि गच्छम मैं उन्हें समझ नहीं सकता, यत जिनसे आत्म संभव स्वयं मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया है, जिनके कारण मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया। भले ही मैं कितनी सारी तपस्या करके आया हूँ, भले ही मैंने कितने सारे योग अभ्यास में प्रैक्टिस की है, भले ही सारे प्रजापति मुझे अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन भगवान को समझ नहीं पाता। अनुवाद, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य अपनी तपस्या संयम योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से हृदोत्कंठता यानी उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्तिमय सेवा का भाव है। अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैदिक ज्ञान वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस सत्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.54 and 55 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु वेदेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत् ज्ञात्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्।
वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपर्युक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से भक्त्या ही क्रमशः भगवान को जान सकता है, किंतु विषते यानी मैं प्रवेश करता है उसका यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहती है। जिस प्रकार कोई अबूझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुई आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति से भक्त्या माम अभिजानन्ति, इस विषते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नता आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के बाद भी जब तक ऐसा जो ना शोक करता है ना इच्छा करता है, सारे जीवों में समह सर्वेषु भूतेषु, इतना जब वो अत्यधिक उन्नत हो जाता है ना, फिर कहीं जाकर भगवान कहते मद भक्ति लभते परम, फिर उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती है तो चाहे कितनी भी योग्यताएं हो, ज्ञान हो, तपस्या हो, ध्यान हो, जितनी ही योग्य शक्ति हो, भगवान को नहीं जाना जाएगा। भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, जैसा मैं हूँ मुझे तत्व से जानकर विषयते तदनंतरम। यहाँ इस विषयते कुशल प्रभुपाद जी ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के अंदर प्रवेश कर देगा, नहीं, भक्ति प्राप्त करने के बाद जब मुक्ति होती है तो भगवान के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है, बल्कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, अर्थात भगवान का धाम प्राप्त होता है, जहाँ पर भक्त भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश करता है। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में विषयते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से ही तुष्ट रहते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी वापस से बता रहे हैं कि भक्तों की इच्छा ही नहीं होती है कि वो भगवान के अंदर जाकर लीन हो जाए, क्योंकि जो लीन हो जाएगा उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर वो भगवान से प्रेम कैसे करेगा, फिर वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कैसे करेगा, वो कैसे उस आनंद का आस्वादन करेगा जो एक प्रेमी को अपने प्रीतम से प्रेम करने में आता है। तो भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता जिसमें भगवान से लीन होना पड़ता है। भक्त की इच्छा तो ये होती है कि मेरी स्थिति होनी चाहिए, मैं भगवान से संबंध जोड़कर उनकी सेवा करूं। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से वो संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। आगे श्री प्रभुपाद जी बताए, अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर और कौन विद्वान वैदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम हैं, क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं? अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत यानी भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार। भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, अर्थात केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु भगवान अदुर्लभम आत्म भक्तो अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। अतिवशिला व्यास देव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया कि भगवान को जानने के लिए भक्ति के अतिरिक्त और कोई योग्यता काम नहीं आएगी। जैसे ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, जिनको भगवान ने इतना ज्ञान दिया, उन्होंने इतनी तपस्याएं की, सारे योग शक्तियों को प्राप्त किया, भले कितना ही ध्यान किया, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता। और आज के कीड़े मकोड़े जिनके अंदर कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वो बोलते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं होता। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण, समस्त ईश्वरों के ईश्वर यदि कोई है तो वो कृष्ण है, तो फिर हमको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम बुद्धिमान जीव है, आदि कवि है, और वो है जिनको भगवान ने ज्ञान दिया, सारे वेद शास्त्र जो हैं, जिन्होंने पढ़ लिए हैं, जिनको सब शास्त्रों का ज्ञान है, वो बोलने में भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वेदों के पढ़ने से भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि वेद जब सारे लिख दिए, तब भी वेद व्यास जी परेशान थे कि मैं इतने सारे वेद लिखे हैं फिर भी मुझे आनंद नहीं आता। तब उनके गुरु महाराज नारद मुनि कहते हैं, कैसे आएगा तुम्हें आनंद? क्योंकि आनंद तो तभी संभव है जब हम सच्चा आनंद भगवान के साथ प्रेम का संबंध निर्माण करते हैं। इसलिए तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल कृष्ण लीला हो, कृष्ण से प्रेम किस प्रकार किया जाता है वो लीलाएं लिखो। तब वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया। इसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा शास्त्र है, परम माध्यम है, जिसके द्वारा हम परम सत्य को जान सकते हैं। इसलिए हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने का, श्रवण करने का हृदय में उत्साह रखना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। बाकी श्लोक हम कर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।